اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم یہ لیکچر نمبر 12 پڑھنے لگے، پیج نمبر ہے 99۔ اب یہاں تک آپ نے مطلب 99 کے پھیر میں پڑھنے سے پہلے جو کچھ پڑھا اس کو اپنے ابھی تقریباً انہی باتوں کی تکرار ہوتی رہے گی مختلف زاویوں سے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سارے زاویوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ لیکچر نمبر 11 میں جس کا عنوان اندر کی آواز تھا، اس میں یہ بات بتائی گئی کہ ساری کائنات جو ہے یہ ایک مرکز سے بندھی ہوئی ہے، اور انسان کے اندر جو لطیفہ نفسی ہے یہ چراغ کی لو کی طرح ہے، اور وہ اس کی لو سرچ لائٹ کی طرح کہہ لیں، کیونکہ یہ چراغ وغیرہ ہم لوگوں نے اب کم ہی دیکھے ہیں، خاص طور پہ ینگ جنریشن میں۔ تو جس طرح ایک سرچ لائٹ کی روشنی جہاں تک جاتی ہے پھر اس میں شیڈز ہوتے ہیں، کہیں وہ ہلکی پڑ رہی ہے، کہیں بہت ہلکی پڑ رہی ہے، کہیں تیز پڑ رہی ہے، کہیں بہت تیز پڑ رہی ہے۔ تو یہ جو چار درجے ہیں، بہت ہلکی، ہلکی، اور پھر تیز، اور پھر بہت تیز، اس کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے نام رکھے گئے ہیں وہما، خیال، تصور اور احساس۔ اور اسی احساس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایک طریقہ بتایا گیا، پھر انر مطلب چیزوں میں جو خیالات ہیں وہ کس طرح آواز بن کر گونجتے ہیں انسان کے اندر، اور پھر ایک ذاتی تجربہ جو حضور مرشد کریم نے اس چیپٹر کے آخر میں لکھا کہ حضور قلندر باب اولیاء نے جب یہ قانون لکھوا رہے تھے تو فرمایا کہ میں کشمیر میں زعفران کے کھیتوں کی طرف میرا ذہن مرکوز ہو گیا، اور وہ کھیتوں کا تصور قائم کر کے میں نے لمبے لمبے سانس لینا شروع کر دیے۔ یعنی تصور قائم ہوا، تصور میں زعفران کے پھول کھلے ہوئے ہیں، اور پھر ان کی خوشبو محسوس کرنے لگے، لمبے لمبے سانس لے کر، جیسے باقاعدہ فیل کر رہا ہے کوئی کہ واقعی جیسے ان کھیتوں میں کھڑا ہے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے کمرہ اور گھر کا صحن زعفران کی خوشبو سے معطر ہو گیا، یعنی یہ عمل جاری رہا، ذہن زعفران کی خوشبو پہ اس قدر مرتکز ہو گیا کہ یہ احساس وہاں پہ موجود لوگوں کا احساس بنتا چلا گیا۔ اب اس ذاتی تجربے کو علیحدہ لکھنے کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ بات ہمارے شعور میں بٹھا دی جائے کہ یہ ہر چیز کو جس طرف بھی ذہن مرکوز ہو ہمیں اس کو اس درجے محسوس کرنا آنا چاہیے۔ اب یہ ذہن بنانا ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ اگر آپ روحانیت سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ جو ذاتی تجربہ جو میں نے اس کو اسی لیے ریپیٹ کیا کہ یہ تیزی میں یہ نقطہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے، اس کو نہ یہ نظر سے اوجھل نہ ہونے پائے کہ ایک بندہ جب کسی چیز کو اپنے تصور میں محسوس کر کے اس کی خوشبو سونگ سک رہا ہے، شامع سے کام لے رہا ہے، یعنی نظر سے دکھ رہا ہوگا، وہاں پہ چلتی سرسراتی ہوا کی سرسراہٹ بھی سن رہے ہوں گے، تو اس کی خوشبو بھی محسوس کر رہے ہوں گے، اور وہ محسوسات میں ایسی شدت کہ لوگوں کو کمرہ معطر ہونے کا احساس ہوا۔ یہ ہے پریکٹیکل روحانی تجربہ۔ تو یہ پیج نمبر 99 پہ شروع کرتے ہیں جی، لیکچر نمبر 12۔ عنوان بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ لاعلمی بھی علم ہے، لاعلمی भी इल्म है, यानी ये मालूम होना कि मुझे कुछ नहीं आता, ये भी तो इल्म हुआ। ला इल्मी भी इल्म है, अगर मुझे ये पता है कि मुझे नहीं आता, मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं मालूम, तो गोया ये भी तो एक इल्म ही हुआ ना। तो ला इल्मी भी इल्म है। देखें, एक रूहानी बंदा किस तरह से नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाता है, देखता है पहले उसे पॉजिटिव और फिर बताता है, और फिर बताने से पहले उसे बना देता है। अब ला इल्मी को आप जहालत कहते हैं, हम इसे बुरा मानते हैं, लेकिन रूहानी बंदा कह रहा है ये भी एक इल्म है। और इसकी शरह क्या फरमा रहे हैं कि जब भी किसी इल्म का तज़किरा होता है, दो बातें लाज़िमन दरपेश आती, इल्म का मनफी पहलू और इल्म का मुस्बत पहलू। जब हम इनकार करते हैं तो दरअसल हम किसी है की नफी करते हैं, इनकार करते हैं, कहते हैं ये नहीं है। जब हम नहीं है कह रहे हैं तो असल में नहीं की नफी कर रहे हैं, यानी कोई चीज़ मौजूद है। अगर कोई चीज़ मौजूद ना हो तो उसका तज़किरा नहीं होगा। तो जब हम इल्म के बारे में कुछ कहते हैं तो इल्म के बारे में हमारे ज़हन में मानी होते हैं, और जब हम इनकार करते हैं तो नफी को कबूल करते हैं। देखिए ज़रा कैसी बारीक बात है, हम इनकार असल में कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, उसकी निगेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, नफी को कबूल कर रहे हैं। यानी हम ऐसी चीज का तज़किरा करते हैं जिसके होने का हमको इल्म हासिल नहीं है। मफहूम ये हुआ कि ला इल्मी का नाम हमने नफी रखा हुआ है और इल्म का नाम असबात है। असबात मैंने यस, असबात मैंने पॉजिटिविटी, और नफी मैंने नेगेटिविटी या नो। तो ला इल्मी का नाम है नो, मुझे नहीं पता, नहीं पता। तो इसी तरह मुझे मालूम है, तो इल्म का नाम हमने असबात रखा। जब तक हम ला इल्मी से वाकिफ नहीं होते उस वक्त तक इल्म के दायरे में कदम नहीं बढ़ा सकते। यहां से ये कानून बन गया कि कानून ये बना कि पहले आपको ये तय करना है कि आप वाकिफ हैं या नहीं है। अगर हम वाकिफ नहीं है तभी तो हम वाकफियत पैदा करना चाहेंगे, हमें इल्म होगा तो हम क्यों उस तरफ जाएंगे। हमें तस्लीम करना होता है कि हमें नहीं पता। जब तक हम लाइल्मी से वाकिफ नहीं होते उस वक्त तक हम इल्म के दायरे में कदम नहीं बढ़ा सकते। यानी लाइल्मी भी एक इल्म है। अब रूहानी लोग जो हैं लाइल्मी की मार्फत को इल्मे ला और इल्म की मार्फत को इल्मे इल्ला कहते हैं। ये जो ला इलाह का इस्तेमाल है वो यहाँ पे रूहानी बंदा इस तरह करता है, इल्मे ला यानी इल्म, लाइल्मी की मार्फत और इल्मे इल्ला ये इल्म की मार्फत हुई। मुझे जो चीज़ें मालूम हैं, जो ज़िंदगी में गुजार चुका हूँ, वो जो मेरे सारे तजुर्बात हैं, वो मेरा इल्म बन चुके हैं। अब मैं अगर उसकी तरफ इशारा करता हूँ तो वो इल्म इल्ला होगा, लेकिन जो चीज़ें मुझे मालूम नहीं वो इल्म ला हुआ। अब नूर की एक तजल्ली का नाम ला है और दूसरी तजल्ली का नाम इल्ला है। अब गौर करें, नूर किसे कहते हैं, ख्याल को, और उसकी ख्याल की नूर की तजल्ली यानी के उसका डिस्प्ले, यानी ख्याल का एक डिस्प्ले क्या है, उसका नाम है ला कि मुझे नहीं पता कि ये क्या ख्याल है, और दूसरी नफी तजल्ली का नाम है इल्ला यानी मुझे पता है कि ये क्या है। जब सालक इल्मे ला से वाकिफ हो जाता है, या देखिए क्या कह रहे हैं, ला शऊर से वाकिफ हो जाता है, ला शऊर यानी वो जान लेता है कि ये चीज मेरे शऊर में नहीं है, यानी अपने ला शऊर से मुतारिफ हो जाता है। जब सालिक इल्मे ला से वाकिफ हो जाता है, या अपने लाशऊर से वाकिफ हो जाते हैं। आप गौर करें जरा कैसा अजीब निज़ाम है, हमारी आम शौरी निज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं, कि हम जो कहते हैं ना शऊर का मतलब है जानना, तो जो नहीं जानता उसका नाम हम ने मतलब लाशऊर रखा, लेकिन आम सेंस में हम शऊर कहते हैं जानने को, और जो सब कुछ जानता है उसका नाम लाशऊर रख दिया। गौर करें, अब इसके पीछे ये बारीक सी बात फर्क समझें कि सालक इल्मे ला से वाकिफ होता है, यानी वो अपने लाशऊर से मुतारिफ होता है या होना चाहता है, तो इसके लिए जरूरी है कि वो जो कुछ जानता है उसकी नफी कर दे। अब खारजी दुनिया के तवाहमात, तसव्वुरात और ख्यालात को आरजी तौर पर भूल जाए, इसमें लफ्ज है आरजी तौर पर, यानी वक्ती और लम्हाती तौर पर उसे नजर हटा ले, यह है नफी का तरीका। हम कहते हैं जी कि मैं हूं तो कैसे मैं नहीं हूं, मैं अपनी नफी करने बैठ जाता हूं, मैं की तो नफी नहीं हो सकती, वो तो है। तो सिर्फ यह है कि जब हम किसी और चीज की तरफ मतवजो होते हैं तो अपनी जात से तवज्जो हटा लेने का नाम है। साफ लिखा है आरजी तौर पर भूल जाए, आरजी तौर पर भूल जाए। ये बहुत पेचीदा सब्जेक्ट बनाया हुआ है हम लोगों ने कि नफी 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 और असबात नफी असबात। वो एक शेर भी ये है, दिल मन विच बूटी लाई हूँ नफी असबात दा पानी दे दे, पता नहीं क्या वो मुझे भूल गया। तो ये क्या कहा, खारजी दुनिया के हाँ अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी लाई हू, मुर्शद मन विच था मुर्शद मन विच अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शद मन विच लाई हू, नफी असबात दा पानी पानी दे के। अच्छा जरा दोबारा पढ़ दें मैं बहुत ही सुस्त सीखने वाला हूँ जी, लाई हूँ असबाद हर हाँ हर रगे हर जाई हर रग हाँ जी, ये उसी की शरह फरमा रहे हैं मुर्शिदे करीम कि जब सालक खारजी दुनिया, देखें साफ लिखा हुआ है कि खारजी दुनिया के तवाहमात तसव्वुरात और ख्यालात को आरजी तौर पर भूल जाए, अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो इल्म से वाकिफ नहीं होगा। अब आगे देखें मिसाल क्या दे रहे हैं, एक पढ़ा लिखा आदमी जब नया इल्म सीखता है तो इसकी हैसियत नर्सरी के बच्चे की तरह होती है। अब इल्म सीखने के लिए मौजूद इल्म की नफी करना जरूरी है, यानी अगर वो देखें ना एक बंदा एमए उर्दू कर चुका है, अब वो इंग्लिश सीखना चाहता है तो अलिफ एबीसी से ही सीखेगा ना। अगर वो अपने एमए उर्दू होने को लेकर बैठेगा तो जाहिर है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसको भूलना पड़ेगा कि मैं उर्दू, तब जाके वो इंग्लिश सीख सकता है। तो इल्म सीखने के लिए मौजूद इल्म की नफी करना जरूरी है। अगर वो अपनी इल्मी हैसियत को बरकरार रखते हुए कोई नया इल्म सीखना चाहता है तो वो नया इल्म नहीं सीख सकता। मसलन अंग्रेजी पढ़ा लिखा आदमी जब उर्दू पढ़ेगा तो उसे अलिफ़बे पढ़ने के लिए ए बी सी डी पर इसरार नहीं होगा। यहाँ पे इसरार की इमला ठीक कर ले, ये स्वाद से होना चाहिए, ये वाला इसरार जो है ये सिर वाला है, यानी ये तो राजों वाला इसरार आ गया। तो एक छोटा बच्चा जो कायदे के इब्तदाई हरूफ से भी वाकिफ नहीं है, उसको हम किसी उस्ताद की शागिर्दी में दे ले जाते हैं, उस्ताद लाइल्मी को इल्मी दायरे में जब दाखिल करना चाहता है तो कहता है अलिफ, बच्चा समझे बगैर उस्ताद की नकल में अलिफ कहता है, और वो बतदरीज हरूफ की शनाख्त करके अपनी लाइल्मी को इल्म में मुंतकिल कर लेता है। लेकिन अगर यही बच्चा उस्ताद की बात तस्लीम ना करे तो वो इल्म नहीं सीख सकता। मसलन एक बाप अपने बेटे के साथ मकतब में जाता है, उस्ताद बच्चे से कहता है कि अलिफ, बाप अपने बच्चे से ये कहता है बेटा उस्ताद से पूछो कि अलिफ क्यों है या अलिफ बे क्यों नहीं है, तो नतीजतन बच्चा आलिम नहीं बनेगा। हम ये तस्लीम करने पर मजबूर हैं कि जब तक हम लाइल्मी की मारिफत हासिल नहीं करते हमें कोई इल्म हासिल नहीं होता। ये कानून फाइनल हतमी है कि जब तक आप ये मान नहीं लेते कि मुझे नहीं पता, आप पता नहीं चला सकते। कई मर्तबा लोग सवाल कर बैठते हैं कि अल्लाह से पहले क्या था। अब ये एक ऐसा सवाल है जिससे हर बाशऊर आदमी कभी ना कभी परेशान होता है। जो लोग तफक्कुर से वाकिफ हैं, वाकिफ नहीं हैं, वो इस सवाल को महज ख्याल या वसवसा कहकर गुजर जाते हैं। लेकिन जिन लोगों के जहन में गहराई है उनका जहन इस सवाल का बार बार इआदा करता है, यानी उसको दोहराता रहता है, और अगर जवाब नहीं मिलता तो वो खुदा की ज़ात से इनकार कर बैठते हैं। बात सिर्फ यह है कि वो इल्म को अकल से और इल्ला के जहन से इल्म ला को समझना चाहते हैं। ये बात इल्मी सॉरी रूहानी अलूम की रोशनी में फरमाई है। ठीक है, अब गौर करें कि सवाल में क्या गलती है। यानी जब आप गौर करेंगे कि अल्लाह से पहले क्या था, तो अल्लाह तो वक्त का खालिक है, अल्लाह वक्त का खालिक है, तो उसके लिए पहले और बाद हो ही नहीं सकता। ये लॉजिकल बात आ गई। जब आपने गौर किया, एआदा किया, और जब समझा कि अल्लाह क्या है, अल्लाह खालिक है, किसका, वक्त का भी तो खालिक है, और फिर हमारा दुनियावी मुआशरती या ये इल्म हसूली या शौरी निज़ाम के तहत जो वक्त के मयार हैं वो तो ज़मीन की गर्दिश से बंधे हुए हैं कि ज़मीन की एक रोटेशन को आप 24 घंटे कह रहे हैं, तो जिस जोन में ज़मीन की रोटेशन नहीं है वहाँ कौन सा वक्त है। तो लिहाजा अल्लाह से पहले किसी वक्त, ये मैं लॉजिकली आपको बता रहा हूँ ताकि आप ज़रा इससे खुद गौर करके इस बात को समझ सकें कि ये कितना ज़रूरी सवाल है और इसको किस तरह गहराई में जाके आपको खुद रिजॉल्व करना है। तो ये वसवसा नहीं है, इसका इआदा करता है। और अगर जवाब नहीं मिलता, यानी ये मैंने इसलिए जवाब अर्ज कर दिया ताकि आप इनकार न कर बैठें, बात सिर्फ ये है कि वो इल्म को अकल से और इल्ला के जहन से इल्म ला को समझना चाहते हैं, वहाँ तो है ही कुछ नहीं, तो फिर इल्म ला को समझने के लिए आपको इल्ला के जहन से हटना है। ये हो गई बात सूफियाना अंदाज में या एक रूहानी बंदे के अंदाज में, और जो मैंने अर्ज किया वो एक आम लेमैन के तर्जों में एक बड़े की बात को समझने के लिए खुद घड़वंत की एक बात बना ली कि भाई अल्लाह तो खालिक है, खालिक होने के नाते टाइम का भी खालिक है, जमानियत भी उसके उसकी तख्लीक है, तो उससे पहले कैसे हो सकता है टाइम, वो तो खुद मौजूद था वक्त से पहले भी, तो इसलिए उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। जब सालिक का जहन पूरी तरह इल्मे ला, यानी इल्मे ला, या देखिए यहां पे इल्मे ला को एक और नाम देने लगे, वहदानियत के तसव्वुर को समझ लेता है, तो वो अल्लाह की मारिफत में पहला कदम उठा देता है। यानी ये बात जब सालिक को पूरी तरह जहन नशीन हो जाती है, और सालिक किसे कहते हैं, वो जिसने अपने रवैयों को दुरुस्त किया, सालिक से ना सलूक करना, जब पूरी तरह इल्मे ला या लाशऊर भी कहा था, और यहां पे दूसरा लफ्ज क्या लाए हैं, کہ وحدانیت کے تصور کو سمجھ لیتا ہے تو وہ اللہ کی معرفت میں پہلا قدم اٹھا لیتا ہے. یہ پہلا قدم ہے کہاں؟ اللہ کی معرفت کا. پہلے پہل اسے اپنی ذات کا عرفان حاصل ہوتا ہے. جب وہ اللہ کو سمجھنے لگتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میں کون ہوں, اور تلاش کرنے کے باوجود بھی وہ خود کو کہیں نہیں پاتا کہ بھئی میں کون ہوں, میں کیا ہوں, اس کا جواب نہیں ملتا. تو خود کو کہیں نہیں پاتا. جب اس کے علم کی نفی ہو جاتی ہے, یعنی میں کہاں تھا, کہاں سے آیا, یہ سب باتیں نہیں پتا نا, تو پھر اس کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اللہ کی ذات تھی. تو وحدانیت کا صحیح احساس اور معرفت کا صحیح مفہوم اس کے احساس میں داخل ہو جاتا ہے کہ مجھے کسی نے تخلیق کی ہے, میرا کوئی خالق ہے جس نے مجھے بنایا ہے. یہاں سے اس طرح اس کے احساس میں یہ بات, احساس میں, خیال میں نہیں, تصور میں نہیں, احساس میں بات داخل ہوتی ہے. اور یہی وہ مقام ہے جس کو فنائیت کہتے ہیں. جب سالک لا کے انوار کو اپنے ادراک کی گہرائیوں میں محسوس کرنے لگتا ہے تو شعور سے بالا تر ہو کر لا شعور میں داخل ہو جاتا ہے. جب سالک لا کے انوار کو اپنے ادراک کی گہرائیوں میں محسوس کرنے لگتا ہے, یعنی اس کی حسیات اس چیز کو, لا کے انوار کو, یعنی لا سے آنے والی افکار اور فکر اور سوچ کو محسوس کرنے لگتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے؟ وہ شعور سے بالا تر ہو جاتا ہے, لا شعور میں داخل ہو جاتا ہے. اور جب وہ یہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کی اپنی ذات کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, اور اس کا علم تو نفی کا درجہ رکھتا ہے, تو اس کے اندر استغراق پیدا ہو جاتا ہے. اب استغراق کا لفظ غرق ہونے سے, یعنی ذہن اللہ کی وحدانیت میں ڈوبتا چلا جاتا ہے. استغراق کو حاصل کرنے کے لیے تفہیم میں, یعنی استغراق کو حاصل کرنا تفہیم ہوا, تفہیم میں نے بات کی سمجھ, اسی چیز کو ادراک کی گہرائیوں میں محسوس کرنا. اب یہ ساری مشقیں کرنے سے آتا ہے. یہ مشقیں کیا ہے؟ تفہیم میں پہلا مرحلہ مسلسل بیدار رہنے کا عمل ہے. مسلسل مسلسل بیدار رہنے یعنی 72 گھنٹے تک جاگنے, اور اس کے بعد 2 گھنٹے 45 منٹ کی نیند کی مشق کرنے سے سالک کے اندر قوت القاء پیدا ہو جاتی ہے. دیکھیں کتنا کمانڈ چاہیے, آپ کو اپنے ارادے کی طاقت کو کتنا بڑھانا ہے کہ آپ اپنی نیند کی عادت اور طبیعت کا استقاضا جو ہے اس کو مولڈ کر لیں. جب یہ مولڈنگ ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ قوت القاء پیدا ہو جاتی ہے. تو گویا قوت القاء کیا چیز ہوئی؟ کام کرنے کی صلاحیت. قوت القاء پیدا ہو جاتی ہے, قوت القاء سے اس فکر کی بنیادیں پڑ جاتی ہیں. جب اس کے اندر یہ کام کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اندر اس فکر کی بنیادیں پڑ جاتی ہیں, جس فکر کے دائرے میں علم لا کے انوار اپنی وسعتوں کے ساتھ موجود ہیں. علم لا کے انوار, علم لا سے متعلق جتنی سوچیں پھر ان کی وسعتوں کا اندازہ ہونے لگتا ہے کہ ہر خیال کے پیچھے کتنا علم ہے. غور و فکر اور بیدار رہنے کی کوشش کے ذریعے اس فکر میں آب و تاب اور توانائی آنے لگتی ہے. غور و فکر بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے اور بیدار رہنے کی کوشش بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ آپ پہلی دفعہ میں کامیاب ہو جائیں, کوشش کرتے رہنے سے آہستہ آہستہ کنٹرول آتے ہیں. کنٹرولز کا نام ہے سارا یہ قوت القاء جو ہے. تو پھر اس فکر میں آب و تاب اور توانائی آنے لگتی ہے, اور جب ये तवानाई एनर्जी नशोनुमा पा चुकती है, तो ला के अनवार विरुद्ध में आंख के सामने आ जाते हैं। अब विरुद्ध किसे कहते हैं? वारे दोना के ला के अनवार बाकायदा आपके अंदर वारे दोते महसूस होते हैं, उसे हालत कहते हैं, उस हालत को विरुद्ध कहते हैं कि आंख के सामने आ जाते हैं, यानी ख्याल जो है वो तस्वीरी सूरत में दिखना शुरू हो जाता है। उसके लिए कुव्वत अलका चाहिए और उसके लिए लगातार गौर व फिक्र और बेदार रहने की कोशिश, तफक्कुर। जब कुव्वत अलका को और ज्यादा लतीफ बना देता है, लतीफ का मतलब उसमें लताफत बढ़ जाती है, उसकी कसाफतें कम हो जाती हैं, तो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम औलिया तकवीन और मलाइका नजर के सामने आने लगते। हजरत खिजर ये ओहदा है, ये किसी शख्स का नाम नहीं है, ये रूहानियत में उस बंदे का नाम है जो तकवीन का काम कर रहा था। जैसे कहते हैं ना कि हजरत खिजर आज भी हयात हैं, तो असल में किस्सा ये है कि वो अब जैसे 1920 में जो डिप्टी कमिश्नर था, जाहिर है वो डिप्टी कमिश्नर तो नहीं है जो आज 2020 में, लेकिन ओहदा वही है। तो इस तरह हजरत खिजर जो है वो एक ओहदे का नाम है, वो आज भी वही ओहदा चल रहा है। तो उसमें औलिया तकवीन और फिर मलाइका, यानी फिक्र में लताफत जब पैदा होती है, अभी तो हमारी फिक्र में कसाफत है, मादियत गुजरी हुई है। इसके बाद क्या? इसके बाद मुसलसल तवज्जो और मुराकबा करने से सालक औलिया तकवीन और मलाइका की गुफ्तगू सुनने लगता है, यानी पहले नजर काम करती है और फिर समात बेदार होने लगती है, फिर आदमी उनकी गुफ्तगू सुनने लगता है। रफ्ता रफ्ता औलिया अल्लाह की अरवाह और फरिश्तों से सवाल और जवाब की नौबत आ जाती है और सालक के ऊपर गैब की दुनिया रोशन हो जाती है और गैबी इंतजामात का इनकशाफ होने लगता है। ला के मुराकबे में आँखों को ज़्यादा से ज़्यादा बंद रखने का एहतमाम ज़रूरी है। मैं यहाँ पे रुकता हूँ और आपकी तवज्जो एक बात की तरफ दिला दूँ। माशाल्लाह हम सब अजीमी हैं, तसव्वुर शेख से हम खूब आगाह हैं। तसव्वुर शेख करते हैं मुर्शद की शबी दिखती है या नहीं दिखती, ये कलहदा जिनको दिखती है क्या वो इसमें मजीद लताफत पैदा करके मुर्शद की आवाज सुनने की कभी कोशिश करते हैं? मुर्शद करीम को मुराकबे में अपने साथ इस तरह महसूस करें जैसे फिजिकली हम उनके कुर्बत में जो कुछ फील कर रहे होते हैं। अगर हम मुर्शद करीम को इस तरह फील नहीं कर पा रहे तो क्या देखना? फिर तो हम अपने तसव्वुर को देख रहे हैं ना, मुर्शद करीम को तो नहीं देख रहे। इसी तरह अगर हमारा ये सारे दर्जे जो हैं यहाँ पे पहले आपको प्रैक्टिस करने हैं अपने मुर्शद करीम के साथ, क्या कि मुसलसल तवज्जो और मुराकबा करने से वो औलिया तकवीन और मलाइका की गुफ्तगू सुनने लगता है। अब ये बातें सुन के हम कहते हैं जी हम तो वो नहीं कर, हाँ तो मश्क यहाँ से करनी है ना, तसव्वुर शेख के मुराकबे में ये सब कुछ बातें मौजूद हैं कि हमें अपने पीरो मुर्शद की शक्ल व शबाहत नजर ना आए, सिर्फ नजर ना आए बल्कि उनकी बात उनकी गुफ्तगू हमारी समाज तक पहुंचे और फिर रफ्ता रफ्ता हमारा शऊर इतना मजबूत हो जाए कि सवाल जवाब होने लगे मुर्शद करीम से। मुराकबे की हालत में आप सवाल करें वहां से जवाब आए और फिर आपके ऊपर गैब की दुनिया रोशन होती चली जाए और गैबी इनकशाफात इंतजामात का इनकशाफ होने लगे, यानी पता चले कि मुर्शिद ने ये काम क्यों किया, ये काम क्यों तजवीज़ किया, इसकी क्या वजूहात हैं, इसके पीछे क्या राज है, इसके पीछे क्या इसरार हैं। तो ये इनकशाफात। और फिर जब लाता मुराकबा कर रहे हो तो आँखों को ज़्यादा से ज़्यादा बंद रखने का एहतमाम ज़रूरी है। लिहाजा अब आँखें कैसे बंद रखनी है ये इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। ठीक हो गया जी। आज मैंने ये बीच में दो तीन बातें आपकी तवज्जो दिलाने के लिए उसकी वजाहत में कह दी, उम्मीद है कि ये आप बर्दाश्त कर लेंगे। टेक ए गुड केयर। आपका शुक्रिया जी।